किसने पढ़ने का हुक्म दिया? जी, तो आप मुझे ये बताएं कि जो अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सिखाए, उनसे बढ़ के कोई अल्फाज हो सकते हैं? खुद सिखाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन स्टिल हमें वो अल्फाज ज्यादा पसंद आते हैं जो कि लोगों के लिखे हुए होते हैं, दरूदे लक्की, दरूदे पता नहीं क्या, कौन कौन से दरूद हैं जो बने हुए, ठीक है, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें उसके अंदर कही होंगी, तंजीना है या क्या है, बड़ी अच्छी बातें कही होंगी, लेकिन क्या वो सब हमारे नबी के अल्फाज से भी आगे बढ़ गया आपके लिए कि लोग उसको प्रेफर करते हैं पढ़ना? अच्छा जी, ये बताएं कि तशहुद की उंगली जो उठाना है जब अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे, तो ये कहीं से साबित है? इसकी दलील दें। कहां से साबित है? खास उस वक्त उंगली उठाना क्या साबित है और कहां से साबित है? हाँ जी, साबित नहीं है, किसी हदीस से भी साबित नहीं है। फिर ये बताइए कि कौन सी चार चीजें हैं जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है, जो दुआ की है दरूद के बाद, कौन सी चार चीजों से पनाह मांगी है? जी, कब्र के अजाब से, दज्जाल से और जहन्नुम से, सही, और जिंदगी और मौत के फितने से, सही। लेकिन कम लोगों को ये दुआ याद है। हमें एक रटी रटाई दुआ जो बचपन से सिखा दी जाती है, रब्बी जालनी और रब्बा ना आती ना, इसके अलावा हम किसी दुआ को उस वक्त पढ़ने को समझते हैं कि पता नहीं हमने शायद कोई इजाफा कर दिया है या हमने कुछ गलती कर दी है या इसके बाद कुछ पढ़ना नहीं चाहिए। नहीं, ये दुआ तो खास तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई, तो इसका मतलब इस दुआ को तो जरूर ऐड करना है। दूसरी दुआएं करें नहीं करें, मगर ये दुआ जरूरी है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ये दुआ मांगा करते थे और इसकी तरफ कम तवज्जो हमारी। ये भी दुआ दो तीन तरह के उसमें आती है, किसी में अजाब कब्र से और फिर उसके बाद एंड में गुनाह से और कर्ज के से भी पनाह मांगी गई है, किसी में जहन्नुम कब्र और दज्जाल के फितने से और माहिया वल ममात दोनों जिंदगी और मौत के फितनों से पनाह मांगी गई, तो दोनों ही है इसके अंदर। अच्छा जी, अब ये बताएंगे कि अत्तहियात का माना क्या है? अत्तहियात लाइफ, जी बिल्कुल बिल्कुल, सारी जिंदगी रब्बी जालनी ही सिर्फ पढ़ते हैं, ठीक है, वो भी पढ़ें, ये नहीं है कि वो कोई मना है या कोई गलत है, आप जरूर वो पढ़ते रहें, मगर इसको ऐड करें। आप जितनी मर्जी दुआएं मांगते जा सकते हैं, ठीक है, जितनी मर्जी दुआएं मांगे, लेकिन ये रब्बी जालनी सिर्फ उस पर इक्तफा करना और रब्बाना आतेना पे करना और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है उसको नहीं मांगना तो वो सही नहीं है। सुभानक अल्लाहुम्मा, जी वो भी दुआ इस्तफ्ताह है, मेरी कौली इबादत, ठीक है। अत्तहियात का मतलब क्या है कि मेरी जो जुबान से जो अदा होने वाली इबादत है और जो जिस्म से अदा होने वाली इबादत है उसका नाम क्या है? बदनी इबादत का उस सलावात, और जो माल जो इंसान अल्लाह के रास्ते में देता है वो उस इबादत का नाम क्या है? तैयबात, ठीक है। तो तीनों हो गई ना, जुबान से भी जो इबादत है, जो पूरे जिस्म से जो भी इबादत है, जो माल मैं स्पेंड करती हूँ अल्लाह के रास्ते में, वो भी सब अल्लाह ही के लिए। तो ये जरा इनका माना समझना जरूरी है। अच्छा, ये बताएंगे कि शुरू में सहाबा क्या किया करते थे नमाज में? شروع میں صحابہ کرام کیا کیا کرتے تھے نماز میں؟
بسم اللہ
الرحمن الرحیم، بات چیت کرتے تھے، سلام کا جواب دیتے تھے. اچھا، صحیح. اپنے انداز سے مختلف سلام پھیرتے تھے. بالکل بالکل، اپنے انداز سے کرتے تھے. صحیح ہے، بالکل، الحمدللہ. اچھا جی، یہ بتائیں گے کہ جب انسان اللہ اکبر کر دیتا ہے تو اس کے بعد کون سی دعا کرنی چاہیے، کون سی دعا استفتاح کون سی کرنی چاہیے؟ بسم اللہ، اللہم باعد بینی و بین خطایا. ہاں جی، یہ کرنی چاہیے. یا سبحانک اللہم و بحمدک، یا اللہ اکبر کبیرہ، یہ دو تین طرح کی دعا استفتاح آتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد کیا پڑھنا چاہیے، تعوذ میں کیا پڑھنا چاہیے؟ اچھا، آپ ریڈی ہیں؟ الحمدللہ. اچھا چلیں، ٹھیک ہے، چلیں. ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم ہم پھر ریویو کر لیں گے دونوں ساتھ ہی. ٹھیک ہے.